एक खूबसूरत बात, जब तुम कभी किसी का दिल तोड़ते हो या किसी को ज़रा सी भी दुख देते हो तो अपनी खुशियों की उम्मीद खुदा से बिल्कुल मत रखना। लेकिन जब तुम किसी को एक पल के लिए भी ज़रा सी खुशी देते हो, उसे ज़रा सा खुशहाल करते हो, तो अपनी सारी मुसीबतें, सारे गम, सारे दुख उस खुदा पर छोड़ देना। बेशक अल्लाह से बड़ा मेहरबान कोई नहीं। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत सुबह खैर नाज़रीनो हज़रात। उम्मीद करना बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा की तरह प्यारी सी मुस्कुराहट आपके चेहरों पे इंशाल्लाह कायम और दायम होगी। हम मौजूद हैं तेहरान स्टूडियो में एक गर्मा गर्म दिलचस्प प्रोग्राम लेके आप सबकी खिदमत में। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी, देखते इस तरफ कौन हमारे साथ है। जी
सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, अपने प्यारे पे नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम शुरू करते ही मैं आपको बताते चलूं कि हमारा फेसबुक ऑनलाइन मेरे हाथ में यहाँ पर मौजूद है। आप अपने कमेंट्स, कोई भी बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। और ये भी रूबा बताता चलूं कि हमारा जो हफ्ते का मौजूद चल रहा है, जैसे कि आपको भी पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता है, एहतराम चल रहा है। और उसमें एक जो चीज़ बहुत अहम बताऊँ सुबह सवेरे, वो ये है कि आज का दिन ऐसा करते हैं मिल बैठ के कि हम लोग जो है ना आज फ़ोन उठाएँ, मोबाइल उठाएँ अपने, और अपने वालदैन, जो लोग मुल्क से बाहर हैं वो अपने वालदैन को, बहन भाइयों को, बड़े बहन भाई जो हैं और दादा, अगर मुल्क के अंदर हैं अपने दादा दादी, नाना नानी को जो है आज जो है हम लोग कॉल करें, उनको
कॉल करें, सलाम करें, उनकी तबीयत पूछें, उनका हाल पूछें। खुर्रम ने मेरी दुखती रख पर, मैं बोलूँ, हाथ रख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे हैं और हमारे घर वाले वहाँ पे। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई रूठा हुआ है, आपसे कोई बड़ा आपका अपना रूठा हुआ है, तो आज फ़ोन करके उनको मना लीजिए। क्योंकि देखिए, हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम छोटे हैं, और हमेशा छोटों का फ़र्ज़ हमेशा से यही रहा है कि अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने बड़ों को वो इज़्ज़त करें। क्योंकि आगे चल के हमें ख़ुद को एक ऐसी उम्र में पहुंचना है, एक ऐसी जगह जाना है, हम उन्हीं की उम्र के हो जाएंगे, और फिर हमें अपने बच्चों से यही तवक्का रहती है कि वो भी हमारा एहतराम करें। क्या ख्याल है?
बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें, एक तो बात होती है फ़र्ज़ की, दूसरी बात जो एक बहुत अहम बात है वो ये है कि अगर आप बड़ों का ख्याल रखते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें हमारे एहतराम की उस तरह ज़रूरत नहीं है। कि शायद कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जी हमारे बुज़ुर्गों को हमारे एहतराम की ज़रूरत है या हमारी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन ये उनका प्यार है कि वो हमारी तरफ देखते हैं कि हम उन्हें फ़ोन करें, उनसे मिलने आएं या उनका ख्याल रखें। वगरना अगर मेरे ख्याल में कोई जिंदगी करना चाहे अकेला, तो जिंदगी वो कर सकता है, इतना भी कोई मुश्किल
बात नहीं। लेकिन खुर्रम, आपकी इस बात में अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, एक बात इजाफा करते चलो, हमें इस बात का हमेशा नाजरीन खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए कि जब हम छोटे थे, जब हम चल नहीं सकते थे, जब हम उनकी गोदों में हुआ करते थे, उनके वो जो बाजू में दर्द होता था हमें गोद में उठाते, वो उन्होंने कभी उफ नहीं कहा। रात रात भर जाग के माओं का हमें संभालना, अभी हम खुद माँ हैं या हम खुद वालदे हैं, जब हम खुद बनते हैं तो हमें इस बात का फिर एहसास होता है। तो फिर मैं इस बात पे ये बोलती हूँ कि नहीं, हमें ज़रूरत खुद हमारी, यानी छोटे जो हम हैं, हमें ज़रूरत भी उनका एहतराम रखने की, हमारा फ़र्ज़ और हमारा वजीफा ही यही बनता है कि हम सब उनका एहतराम रखें।
ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है। और हम यहाँ पर बताता चलूँ, हमारे साथ जो है डॉक्टर सुलेल फातिमा चनी लम्हात में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी, और उसके अलावा डॉक्टर अनायत हुसैन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आज का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। अभी वक्त हुआ है हमारा
एक खूबसूरत सा वक्फा लेने का, और इस वक्फे में आप जाके देखिए खूबसूरत सी वीडियो क्लिप, और जब तक सुलेल फातिमा साहिबा हमारे को स्टूडियो में ज्वाइन करती
है। अच्छा, वीडियो क्लिप देखेंगे या हम लोग, मेरे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जी हम लोग जो है बुहुलुल दाना की जो है,
मुझसे नाज़रीन माफी के साथ, माज़रत के साथ मुझसे गलती हो गई, बुहुलुल दाना साहब की एक सबक आमोज खूबसूरत सी कहानी साथ मिलकर देखते हैं। आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। एक लतीफ़ा गो शख्स इस कहानी या दास्तान का नाम था, एक सबक आमोज कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा सबक इस कहानी से सीख ही लिया होगा। खैर, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं खुर्रम के पास, क्योंकि हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान सुलेल फातिमा साहिबा तशरीफ़ ला चुकी है। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब। और जैसे कि इस रुबाब ने बता दिया, डॉक्टर सुलेल फातिमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और एक बहुत ही अहम मौजू बच्चों के वायरल से मुश्किल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ाई में उनको वो कभी कभार मुश्किल पेश आ जाती है, और माँ बाप जो है थोड़ा सा इस मसले में जो है कोताही करते हैं समझने में कि बच्चे को हो सकता है कोई बीमारी या कोई वाकई कोई मसला हो जिसकी वजह से वो सही तरह नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन जो है मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, हरबे जिनमें डॉक्टर का या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का नाम लिस्ट में नहीं आता, और बारह उन हरबों के बारे में नहीं मैं बताना चाहूँगा, लेकिन जो है
हम लोग मार पिटाई, अम्मी की चप्पल और ये सब चीज़ें होती हैं।
अच्छा जी, ये तो आपने अच्छी बात कर दी, वैसे चले आपने सुबह सवेरे वजाहत कर दी, लेकिन ये है कि चलेंगे डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किस वजह से बच्चों में ये मुश्किलात पेश आती हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत खुश आमदीद आपको कहता हूँ।
मेरी तरफ से भी आपको और आपके खूबसूरत से नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करती हूँ।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है?
अल्हम्दुलिल्लाह
का शुक्र है। आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है?
जी, जी,
आप लोग MS कर रहे हैं?
PhD
PhD कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जो आज बड़ा एक अहम मौजू आप लेके आई हैं, और बच्चों में पढ़ने लिखने की मुश्किलात, जिसको हम अगर लर्निंग डिसऑर्डर भी कह दें तो गलत नहीं होगा, तो डॉक्टर साहब क्या है क्या लर्निंग डिसऑर्डर?
बेसिकली पढ़ने लिखने की माजूरी को लर्निंग प्रॉब्लम्स एक वसी इस्तिलाह दी जाती है। बच्चों में इससे मुराद वो तमाम मसाइल डिसेबिलिटीज़ हैं जो बच्चे को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने से रोकती हैं।
ठीक है।
इसके अलावा बच्चा अगर कोई नई मालूमात हासिल करना चाहता है या कोई नया हुनर सीखना चाहता है तो उसमें भी ये दुश्वारी पैदा करती है।
ठीक है।
हम ये नहीं कह सकते कि इन बच्चों के दिमाग दूसरे बच्चों की निस्बत सुस्त होते हैं या ये बच्चे कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनका दिमाग इंफॉर्मेशन को एक मुख्तलिफ अंदाज से प्रोसेस करता है, यानी कोई चीज़ को देखने का, समझने का, सीखने का, सुनने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है।
ठीक है, तरीका मुख्तलिफ है।
जी
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अभी इससे पहले के ये जो LD या लर्निंग डिसऑर्डर का वर्ड है, ये एक वो मजाक का वो वर्ड बन जाए बच्चों में, ये मैं दोबारा आपसे चाहूँगा कि इस चीज़ की वजाहत करें कि हम अगर कहते हैं कि एक बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर है, उसको पढ़ने लिखने में मसला है, यानी बीमारी के तौर पे अगर हम उसको कहते हैं, तो आया उसका जहन कमज़ोर है, उसका IQ कम है, या उसके पास जो है उसका कहते हैं ना जैसे आधा किलो ब्रेन जो है उसका वजन जो है आधा किलो है, उसका जो है वो शायद एक पाव का है, ऐसी कोई बात है या नहीं है?
है तो ये ब्रेन, इसका ताल्लुक डायरेक्टली ब्रेन से ही है।
अच्छा।
लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसके इसके शामिल होने में, इसको कॉज करने में माने जाते हैं।
ठीक है।
अब तक ये जवाब क्लियरली माहिरीन नहीं दे सके कि ये किस वजह से होता है, जबकि कुछ वजूहात कही जाती हैं जिसमें अव्वल ये है कि इसका जेनेटिक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कि कुछ ऐसी जीन्स हैं जो जब उसमें म्यूटेशन होती है तो ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
अच्छा, जीन्स में तब्दीलियां आ गई। ठीक है।
ये भी देखा गया है कि अक्सर अगर वालिदैन में ये पाया गया तो फिर बच्चों में भी आती है।
ठीक है, सही।
इसके अलावा जिस तरह ब्रेन डेवलपमेंट माँ के शिकम से ही शुरू हो जाती है बच्चे की, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स अगर उसको मिलते हैं, जिस तरह माँ के शिकम में लो ऑक्सीजन है या ग्लूकोज की कमी है या पैदाइश के वक्त कम बर्थ वेट है, ये सब फैक्टर्स मिलके बच्चे के लिए आगे उसको लर्निंग डिसेबल बना सकते हैं। आखिर ये भी देखा गया है कि बचपन में अगर कोई गहरी ब्रेन इंजरी हुई है या कोई ऐसे टॉक्सिन या जहरीली चीज़ से बच्चा एक्सपोज हुआ है, मसलन के लेड, तो आगे चल के बच्चा डिसेबल हो सकता है।
अच्छा ठीक, बड़ी जो है दिलचस्प आपने बात बताई कि खुद ऑक्सीजन की कमी जब बच्चा पैदा होता है, ये सारी चीज़ें जो है इनका असर। अच्छा डॉक्टर साहब चलें, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ज़्यादा हम लोग जो है हमारी रसाई नहीं है कि अगर पानी के अंदर लेड आ रहा है या जो है ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होगी किसी वजह से, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये तो बताएं डॉक्टर साहब के कौन क्या क्या किस्में हैं लर्निंग डिसऑर्डर की? मुराद मेरी ये है कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं उसमें भी ये असरअंदाज हो सकती है।
जब हम किस्म की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन बच्चों में पाया जाता है डिसलेक्सिया के नाम से है, जो कि जिसमें रीडिंग बेस्ड यानी मुताले में बच्चे को शुरू में मुश्किल पेश आती है,
यानी पढ़ने में जो वो नहीं पढ़ सकता।
जी बिल्कुल। इसकी इनिशिएशन कहाँ से होती है कि बच्चा हर्फ को, अल्फाज को पहचान नहीं सकता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो मुताला नहीं कर सकता, बहुत आहिस्ते आहिस्ते क्लास में मुताला करता
है।
और बच्चा वो वाले साउंड्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, उन साउंड्स को भी वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता।
ठीक है। ये इन डॉक्टर साहब पहचानने से मुराद क्या है? ये मतलब ये है कि वो बचपन से समझ ही नहीं पाया इन चीज़ों को, या भूल जाता है, या क्या हो क्या रहा
है उसके साथ? जी, उसको अल्फाज जिस तरह हम चीज़ों को देखते हैं, उसको वो अल्फाज उस तरीके से
नजर ही नहीं आ रहे।
जी,
तो ये आंखों का मसला ना हुआ डॉक्टर?
नहीं, आंखों का नहीं। आपको पता है कि हर चीज, हमारा हर चीज एक छोटी सी सुनने देखने की एक ग्लिम्प्स का भी ताल्लुक ब्रेन
से है। ठीक है।
तो जब तक हमारा ब्रेन कोई मैसेज नहीं भेजता हम तक, हम वो चीज नहीं करते।
ठीक, यानी अगर यहाँ पर ABC लिखी हुई है तो वो शायद उसको ठीक तरीके से ए बी सी के तौर पे पहचान ना पाए।
जी,
शक्ल उसकी देख रहा है वो, लेकिन शायद वो उसको ये नहीं पहचान पा रहा कि ये ए है या बी है। इस
उसको अगर फोर्सफुली फॉर इंस्टेंस के अगर मिसाल के तौर पे पिछले क्लास वन में उसने ये पढ़ भी लिया है कि उसको ए को ऐप पढ़ भी लिया, तो वो दूसरे तीसरे ग्रेड में आके वापस भूल जाएगा,
क्योंकि वो उसने रटा लगाया बस।
जी, उसने उस चीज को रिकग्नाइज ही नहीं किया असल में, जिस तरह आज हम बैठ के ये सब चीजें याद करे बगैर बोल सकते हैं।
ठीक है,
इसलिए हम समझ चुके हैं। हाँ,
यानी एक चीज जो है हमारे लिए क्लियर हो चुकी है, वाजे हो चुकी है कि जी ये ए है, और ए की आवाज जो है वो मसलन एप्पल में या एरोप्लेन में, ये इन चीजों में आती है, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता इस चीज़। ठीक डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, बड़ा अहम मौजू चल रहा है हमारा। और नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, डॉक्टर सुलेल फातिमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और बात हमारी चल रही है वो बच्चे जिनको पढ़ने लिखने सीखने में मुश्किलात का सामना आता है। ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने अभी जो है एक बीमारी की तरफ इशारा किया, जिसमें हम जब बच्चे जब पढ़ते हैं वो पढ़ नहीं पाते, वो अल्फाज को पहचान नहीं पाते। इस पर बात जारी रखेंगे डॉक्टर साहब के साथ, अभी चलेंगे रुबाब की तरफ। रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुरमा, बहुत ही मुफीद और बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है आपकी, उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को ही पसंद आ रही हो। लेकिन नाज़रीन, सोचना यह है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कैसे कर सकते हैं। आइए लेते हैं एक वक्फा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किस तरह हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, मैसेज रिकॉर्डर और फेसबुक के पेज के तमाम एड्रेस आपने देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे, हमें बहुत बहुत दिली खुशी होगी। चलते हैं खुर्रम के पास। जी खुर्रम
जी, बिल्कुल, मैसेज रिकॉर्डर भी जो है यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, उस पर भी आप जो है अपना पैगाम डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो हमारे पास जो है बार बार ये कमेंट भी आ रहा है, ईमेल्स भी आ रही हैं कि हमारे जो उर्दू का लाइव लिंक जो है वेबसाइट पे वो काम नहीं कर रहा, मुश्किलात का सामना उसको आ रहा है। और हमने दो तीन बार जो हमारी फनी टीम है, टेक्निकल टीम जो है, उसको बोला है कि जी ये थोड़ा सा मसला रहा है, और मसला सिर्फ थोड़ा सा ये है कि हमारे पास यहाँ पर वो लिंक खुल रहा है और कुछ जगहों पे वो लिंक नहीं खुल पा रहा। तो बारह में जो है एक बार फिर जो है यहीं बैठ के भी अपनी टेक्निकल टीम को जो है ये मैसेज दे देता हूँ कि जी वो फौरी तौर पर जो हमारा लिंक का मसला है उसको ठीक करें, ताकि हमारे नाज़रीन, खास पे अली नादिर साहब जिनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है, वो प्रोग्राम मुलायजा फरमा सकें। डॉक्टर सुलेल फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो आपने बात बता दी कि जो है क्या मसले मसाइल पेश आते हैं, और एक बड़ा अजीब सा मसला है और बड़ा जाना पहचाना मसला है, वो मसला ही होता है कि मेरे साथ भी ये मसला रहा है, लेकिन यह कि बहरहाल मैंने उस मसले के साथ जो है बहुत लड़ाई लड़ी और जो है बहरहाल कामयाबी हासिल हुई। वो मसला है मैथ्स का, रियाजियात का, जो अक्सर बच्चों को इस सब्जेक्ट का नाम सुन के जो है कभी कभार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, इम्तिहान के दिन जो है बुखार भी हो जाता है। ये क्या है, क्या मैथ्स क्या है ये, क्यों कुछ लोग तो बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत डरते हैं?
इसका भी ताल्लुक ब्रेन से ही कहा जाता है, जिस तरह डिसलेक्सिया रीडिंग बेशन है मुताले से था,
ठीक है,
एक ऐसा एक और टर्म कहा जाती है, माहिरीन कहते हैं डिसकैल्कुलिया के नाम से,
ठीक है।
इसके अंदर बच्चे रियाजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। इवन अर्लियर स्टेज पे बच्चों को काउंटिंग्स ये सब चीज़ें भी वो लोग याद नहीं कर पाते। इसका भी ताल्लुक उन्हीं सारे फैक्टर्स से हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी को एनकाउंटर करती हैं।
ठीक, तो यानी ये जो डिसकैल्कुला आपने बोला,
कैल्कुलिया
से वो कैलकुलेशन से आ गया, डिस तो डिस हो गया। तो डॉक्टर साहब, ये फिर यानी ये जो बच्चे ऐसे हैं उनके साथ भी फिर जो है उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उनके साथ ये मसला है इसका मतलब है?
जी, जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे उसके अंदर हम पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के रोल के बारे में बात करेंगे।
ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजूहात आप लोगों को दिखने में मिलती हैं लर्निंग डिसऑर्डर की?
अमूमन तो मैंने जेनेटिक्स पे फोकस किया, ये प्लस ब्रेन डेवलपमेंट अगर किसी भी स्टेज पे, इसलिए कि माँ के शिकम से ही ये फेस शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर अगर कोई हर्डल है या फिर आफ्टर बर्थ कोई ऐसा एक्सपोजर मिला है जिससे बच्चे के ब्रेन को कोई डैमेज पहुंचा है।
ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कोई वजूहात नहीं है जिसमें जो हम कहें कि जिनको जिन पे हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं?
अक्सर ये देखा गया है कि ये बिल्कुल रूट लेवल से इसका क्योर नहीं है, यानी हम उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं,
यानी बीमारी को उसके बाद उसको जो है प्यार समझा के जो है थोड़ा सा ठीक कम कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको जो है रीशे से जड़ से निकाल सकें। ठीक डॉक्टर साहब, चलते हैं, ये एक जो बहुत अहम सवाल है माँ बाप के लिए भी होगा, अभी जो हमारे नाज़रीन बैठे होंगे, वो ये है कि कैसे पहचाना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर है, उसको ये मसला नफसियाती मसला जो है, नफसियाती कहूँ गलत तो नहीं है ना डॉक्टर साहब?
जी, इसलिए कि इसका डायग्नोसिस यूजुअली साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से। ठीक,
तो नफसियाती जो मसला है वो है भी सही, यानी कैसे पता चले मतलब एक
कुछ
माँ
साइंस
बाप के
तो
लिए?
पहले माँ बाप को देखनी होगी कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से अगर मुख्तलिफ है,
ठीक है,
किस तरीके से पता चलता है। स्कूल में टीचर से सबसे पहली चीज़ आती है कंप्लेन, एक
अच्छा
सोर्स ये
ठीक,
होती है कि टीचर बोलती है आपका बच्चा, हम उस पर लाख कोशिश करते हैं, वो पढ़ता नहीं है क्लास में, ये सारी
ठीक
चीज़ें।
है,
इसके अलावा स्कूल, अब तो स्कूल में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो बेसिकली कुछ टेस्ट होते हैं ऐसे, जिस तरह IQ टेस्ट होता है, या
ठीक
फिर
है,
क्लास में परफॉर्मेंस देखी जाती है बच्चे की, सोशल इंटरेक्शन देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि इनके रिजल्ट्स को बच्चे की समझने और सीखने की सलाहियत से कंपेयर किया जाता है।
ठीक
अगर
है,
बच्चे की सीखने और समझने की सलाहियत ज़्यादा है और उसकी क्लास परफॉर्मेंस कम है, यानी उसमें पोटेंशियल है, यानी वो डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, तो फिर ऐसे बच्चे को यूजुअली कहा जाता है कि इसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है,
डिसेबिलिटी
कि वो
डिसऑर्डर।
लिखने की है या पढ़ने की है या
ठीक
सुनने से रिलेटेड है, इस तरीके से।
ठीक अच्छा डॉक्टर साहब, बात करेंगे हम लोग इसके बाद भी के जो है कैसे इसको मैनेज कर किया जा सकता है, और कुछ बच्चे बावजूद इसके कि ऐसे डिसऑर्डर्स उनके अंदर होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी है वो जोर लगा 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 के बेचारे जो है वो किसी ना किसी तरह अपने आप को कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं, तो ऐसा क्या है? अगर फिर तो यही वही बात होगी कि हाँ जी आप जोर लगाएं बच्चों पर तो ठीक हो जाएगा, जरूरत ही नहीं साइकेट्रिस्ट पर जाने की। बहरहाल इस पर बात करेंगे, लेकिन जो है चलते हैं रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब जो है हमें और कहाँ पर लेके जा रही हैं।
बहुत
जी
शुक्रिया
रुबाब,
खुर्रम, और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है आपकी। और अगर कैमरा आ जाए, जी कैमरा आ गया। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है लेने का खूबसूरत सा वक्फा, देखते हैं वीडियो क्लिप इस वक्फे में और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, अली लारा साबिया की आवाज़ में एक खूबसूरत सा तराना आपने मुलायजा फरमाया, उम्मीद करते हैं आपको तराना पसंद आएगा, थोड़ा स्टूडियो का माहौल भी चेंज हो गया। चलते हैं खुर्रम के पास और उनकी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी खुर्रम,
जी बहुत शुक्रिया रुबाब, और जो है माहौल जो है बहरहाल खुशगवार कर दिया हमने, जो है आपको सैर करवाई थोड़ी सी इसी तराने में। आप लोगों ने जो कीश मेरे ख्याल से
जी
जो जजीरा है उसके मेरे ख्याल से उसके आसपास की जो है कुछ वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों ने देखे, उम्मीद है कि
बिल्कुल
आपको पसंद आएंगे। बहरहाल अच्छा एक जो बड़ी दिलचस्प चीज़ मेरे जहन में आई रुबाब वो ये थी
जी
कि जो है ना अभी जो हमारी ये गुफ्तगू हो रही है लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में, पढ़ने लिखने में कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं वो भी अपनी माओं माओं को या पापा जो उनके साथ बैठे होंगे उनको बोल रहे होंगे पापा देखें मेरे साथ जो है ये मसला, क्योंकि बच्चे
बिल्कुल
बड़े तेज होते हैं और वो उन्होंने ये सुन लिया ना प्रोग्राम, तो वो अब वो जितना वो पढ़ते थे वो भी छोड़
वो ही छोड़
देंगे
देंगे,
कि जी
बिल्कुल
अल्लाह खैर
बिल्कुल
सल्लाह, अब तो डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया कि जी मसला है, तो वो अब सुबह सुबह जो है मैं नंबर कम आए जी लर्निंग
भाई, हमको लर्निंग
डिसऑर्डर।
डिसऑर्डर हो गया,
बिल्कुल
बिल्कुल
बहरहाल तो ये जो है इस ये चीज़ मेरे जहन में आई, मैंने कहा अब इन बच्चों का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन ये कि चलते हैं डॉक्टर साहब आपने बताया कि पेरेंट्स का टीचर्स का क्या इंसानों का क्या रोल है इसको मैनेज करने में, इस बीमारी को हल करने में, बेहतर बनाने में बच्चों को।
उन शरारती बच्चों के लिए सबसे पहले ही कहूंगी कि
जी
अभी बात में कहने वाली थी कि ऐसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ट्यूटर और टाइम लगाना
हाँ
पड़ेगा।
ये भी अच्छी जो है नुकता आपने बताया, तो वो अगर ये अगर इस चीज़ को बहाना बनाएंगे तो फर्स्ट फिर एक्स्ट्रा ट्यूटर्स वगैरह जो है वो पूरा दिन पढ़ाएंगे उन्हें, बस और तो कुछ नहीं हो सकता।
जी,
जी
तो सबसे पहली बात ये है कि जब आपको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये डायग्नोस कर ले कि बच्चे के अंदर मिसाल के तौर पे मैथ्स, रियाजी का या रीडिंग करने वाला कोई महारत में कोई कमी है इसके साथ,
ठीक है
तो जब एक स्ट्रेटजी माँ बाप को और टीचर को मिलकर बनानी पड़ेगी कि अब इस बच्चे को तालीम के मैदान में और सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स में आगे तो बढ़ाना है,
ठीक है
यानी कोई पाथवे तो चूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैथ्स में बच्चा कमज़ोर है तो एक एक्स्ट्रा ट्यूटर लगा के उसको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स घर में पढ़ाए जाएं।
ठीक
अगर
है
टीचर, इसलिए कि जब वो एक क्लास में होता है, अगर एक बच्चा ऐसा है और बाकी तमाम बच्चे नॉर्मल हैं, तो फिर टीचर इतना फोकस उस बच्चे पे नहीं करती है,
नहीं कर पाएगी। जी सही
इसलिए कि दूसरे बच्चों के लिए वक्त का ज़िया है ये। और फिर जब अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर दूसरे बच्चे इस चीज़ का एडवांटेज लेने लगते हैं।
ठीक है
तो या तो ऐसे बच्चे को अगर साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करें, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में दलवा देना चाहिए,
ठीक है
इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो बच्चा सीखेगा
ठीक है
और उसके साथ जो दूसरे बच्चे होंगे वो सब भी उस कंडीशन का शिकार होंगे, तो उसको इनफीरियोरिटी कोई फील नहीं होगी।
हाँ ऐसा से कमतरी नहीं होगा
जी
फिर। ठीक
बिल्कुल, ये एक एक ये इस तरीके से कर सकते हैं। वरना क्लास में टीचर बच्चे को अपने पास, मतलब आगे वाली बेंच पे बिठा सकती है। अगर बच्चे को लिखाई कॉपी करने वाला कोई मसला है तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, लंबे टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके दिया जा सकता है। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को डांटे ना और सब्र तहमुल से काम लें। इमोशनल और मॉरल सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चा खुद एक दुश्वार स्टेज से गुजर रहा है, उसके ऊपर हम अपनी चीज़ों को इम्पोज करके उसको और हमें मुश्किल नहीं बनाना चाहिए।
ठीक
ये सब चीज़ें हम कर
अच्छा
सकते
डॉक्टर साहब इन पर थोड़ा सा और तफसीली भी बात करेंगे, एक बार फिर ये मैं पूछूंगा आपसे कि ये कैसे पता चलाया जाए कि کہ بچے میں لرننگ ڈس آرڈر ہے واقعاً یا یہ شرارتی بچہ ہے؟
اگر شرارتی بچہ ہوگا تو کوئی ایک فیس پہ تو ضرور وہ سٹرائک کرے گا کہ ہاں یہ ٹھیک کر رہا ہے. ہاں
ٹھیک, کہ اگر پکڑا جائے گا کہیں نہ کہیں
اس کو, کہیں اگر آپ کوئی تحفے کی لالچ دیں یا اس کو کوئی گھومنے پھرانے کی لالچ دیں,
ٹھیک,
ایون اس کے ٹیچر ایسا بولے گا کبھی اس کا بیہیویئر ایسا ہے اور کبھی ایسا, تو اس چیز سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلس سائیکالوجسٹ جب ٹیسٹ رن کریں گے اس کا آئی کیو ٹیسٹ, اس سے فوراً پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچہ شرارتی طور پہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے یا نہیں. عموماً بچے اگر کرتے بھی ہیں تو اس کے لیے دوسرے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, لیکن جو بچے جو مسلسل طور پہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں وہ کمزور یا سست نہیں ہوتے, ان کے اندر یہ
مسئلہ. تو سائیکالوجسٹ کا ایک ماہر نفسیات کا بہت اہم رول ہے اس میں, یعنی آپ کو اگر تھوڑا سا بھی شک ہے تو پہلے دن ہی آپ اس کو بچے کو لے جائیں سائیکالوجسٹ تاکہ وہ بہتر طریقے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آیوڈین کی کمی ہے.
جی آیوڈین کا مجھے اتنا نہیں آئیڈیا, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جب بچہ ڈیورنگ پریگنینسی مدر بچے کو اگر ایسی کوئی نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو بھی اس کا برین پہ افیکٹ ہوتا ہے.
یہ بھی کازز میں آ جائے گا نا, کوئی بھی کاز ہو سکتی ہے,
کیلشیم کی ڈیفیشنسی یا گلوکوز ڈیفیشنسی,
آکسیجن کی کمی ہو گئی,
تو اس کے اندر ڈفرینٹ نیوٹرینٹس, آیوڈین بھی برین ڈیولپمنٹ میں اگر وائٹل ہے تو اس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ.
یعنی یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ آیوڈین ہو, وہ ہو سکتا ہے کسی وائٹمن منرلس کی کمی, بچپن میں اس نے اثر ڈال دیا اور اب جو ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے کسی نہ کسی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے نکات بتائے کہ کیسے جو ہے اس کو مینیج کر کیا جا سکتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہیں پر ہے ڈاکٹر صاحب, نہ والد صاحب کے پاس وقت ہے نہ والدہ کے پاس وقت ہے. اگر والدہ جو ہے, البتہ اگر وہ اس لیول کی ان کی پڑھائی ہے کہ وہ بچے کی مدد کر سکیں, تو مسئلہ تو یہیں پر آ جاتا ہے, بچہ تو ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے 90% 90% کیسز میں میرے خیال میں جو ہے بچہ اکیلا.
اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر بیسٹ سولیوشن یہ ہے کہ ٹیوٹر ارینج کریں, اس لیے کہ اکثر کبھی بالکل درست بات ہے کہ ماں باپ یا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا بزی ہیں ورکنگ اگر ہیں تو,
ٹھیک ہے,
یہی دو اسٹیٹس ہوتے ہیں. اگر گھر میں بیٹھنے والے ماں باپ ہیں تو وہ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی میں کہوں گی کہ وہ سنس ان کو ایسا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو اتنا آگے پہنچا سکے, تو ایک ٹیوٹر فار 2 hours, 1-2 hours کے لیے ضرور رکھنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ بات کریں گے کہ ٹیوٹر جو ہے وہ کس, اس کا کیا بیہیویئر ہوگا بچے کے ساتھ, اس پہ تھوڑی سی تفصیل میں بات کریں گے. بہرحال یہاں پر ہم نے جانا ہے رباب کے پاس. رباب جو ہے کچھ مزیدار قسم کی باتیں ہمارے لیے لے کے آئی ہیں. جی رباب.
جی بہت شکریہ خورم. اور جس طرح بھی آپ والدین کے سپورٹ کا یا والدین کے کردار کا بات کر رہے ہیں, تو میں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا والدین کا کردار بچوں کی پرورش میں اور نشو نما میں ضروری ہے. ناظرین, آپ کو میں آج ایک بہت انٹرسٹنگ یا ایک بہت دلچسپ خبر بتاؤں گی ان صاحب کے بارے میں. ان صاحب کا نام ہے ایمانوئل جوزف بشپ, نام صاحب ان کا ہے, اور یہ 16 کے ہیں, اور یہ ڈاؤن سنڈروم کی جو ایک خاص مشکل یا بیماری آپ بول سکیں, تھوڑی سی ابنارملٹی ان میں ہے, ذہنی طور پر تھوڑی جسمانی طور پر ان پہ موجود ہے, اس بیماری کا شکار ہے. کہتے ہیں جب یہ 3 کے تھے, انہوں نے فلیش کارڈس پڑھنا شروع کیے فرینچ زبان میں. پھر انہوں نے جب یہ 6 کے تھے تو انہوں نے ویلکمنگ نوٹ یا خوش آمدید کہنا سیکھا دوبارہ 3 زبانوں میں, جن میں فرینچ, اٹالین اور انگلش موجود ہے. اس کے علاوہ جب یہ 12 کے تھے یہ صاحب, تو انہوں نے وائلن بجانا شروع کیا, اور انہوں نے وائلن بجایا 900 کے سامنے. ایک کانفرنس ہوا تھا جس میں ورلڈ ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے تھے ان کے لیے خاص کانفرنس ہوا تھا, وہاں پہ انہوں نے وائلن بجایا اور ان کی کافی طرفداری کی گئی. پھر 15 کی عمر میں ان کو پھر سے ٹرکی یا جو ملک ہے ادھر بلایا گیا, اور انہوں نے پھر سے وہاں پہ جو بجایا اور کافی طرفدار جو ان کے تھے وہاں موجود تھے, اور سب نے ان کے کام کو بہت سرایا. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پر جو خاص مراسم ہوتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں, یا خاص بچے یا اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں, ان کے لیے خاص قسم کی سپیچز یعنی تیار کرتے ہیں, اور کافی اچھی, اور یعنی جو ایک ایسی سپیچ ہوتی ہے جو انسان کے دل کو چھو لیتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 3 میں کافی مہارت حاصل رکھتے ہیں, ان میں وہی زبان فرینچ, انگلش اور اٹالین آتی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اولمپکس میں, اسپیشل بچوں کے اولمپکس میں گولف میں گولڈ میڈل جیتا ہے. اس کے علاوہ سوئمنگ میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے, ان کا نام گنیز میں بھی آ چکا ہے. ان کا جو کہتے ہیں ارادہ یا ان کا جو خواب یہ ہے کہ ورلڈ ڈاؤن سنڈروم جو جتنے بھی بچے دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے, یعنی ان کا یہی ارادہ ہے کہ ان کی طرح یہ پل بڑھ سکے, یعنی پڑھ سکے, اور ان کی طرح ان کی پرورش ہو. ان کی پرورش میں خاص کردار ان کی ماں کا ہے, کیونکہ ان کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ جب یہ کہیں جائیں تو بچے ان کا مذاق اڑائیں یا یہ شرمندگی کا باعث کہیں بنے. یہ تو بات ہو گئی ایمانوئل جوزف بشپ صاحب کی. ایک وقفہ لیتے اور پھر کھانے پینے کی لازم ہے. میں وہ دن کبھی نہیں بھولتی جب ہماری امیاں یا ہماری جو مائیں ہوتی تھیں ہمیں مار مار کے رات کو ایک گلاس دودھ کا پلاتی تھی, ہم رو رو کے وہ دودھ کا گلاس پیتے تھے, لیکن اس دودھ میں کتنی خاصیت اور کتنی خوبیاں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں. کہتے ہیں کہ اس میں لیکٹک ایسڈ کی بھرپور جو مقدار ہے موجود ہے, और आपकी जो स्किन है ये इसको काफ़ी साफ और शफाफ रखता है। फिर जिनको अच्छी स्किन की ज़रूरत हो वो दूध ज़रूर पीजिए। अमाइनो एसिड इसमें मौजूद है जो आपकी स्किन के अंदर या आपकी जो जिल्द के अंदर है वो नमी को जो उसका मुतवाजन जो है वो बरकरार रखता है। इसके अलावा कहा गया है, हमेशा से हमने सुना है, कहते हैं कि दूध पीने से आपके दांत और हड्डियाँ मजबूत रहती हैं बिल्कुल, और जो बूढ़े अफराद हैं जिनकी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है वो ज़रूर ज़रूर दूध का इस्तेमाल करें। विटामिन डी से भी ये सरशार है। इसके अलावा कहा गया प्रोटीन की खास मिकदार जो है वो इसमें मौजूद है जो आपके मसल्स जो होते हैं अगर उनमें कोई मुश्किलात का सामना है तो इनको दोबारा से उनकी तामीरात में जो है इसकी काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा कहा गया अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वर्जिश करते हैं, अपने वर्जिश के बाद रोज़ाना एक गिलास नीम गर्म दूध ज़रूर पीजिए। इसके अलावा ये कहा गया है जिनको पतला होने का शौक है, जिनको अपना वजन कम करने का शौक है वो भी दूध पीजिए, क्योंकि दूध में फैट थोड़ा कम होता है। वैसे मैं इस बात से ज़्यादा वो नहीं हूँ, कहते हैं इसमें फैट ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है जिनको बीपी अपना लो करना हो, ब्लड प्रेशर लो करना हो, वो भी दूध का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कहा गया है कैल्शियम की जो खास मिकदार इसमें मौजूद है आपके दिल को मजबूर करती है कि ठीक तरह से काम करे। इसके अलावा ये कहा गया है जिनको डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ 2 टाइप जो होती है, इसमें मैग्नीशियम मौजूद है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है खून के अंदर। इसके अलावा कहा गया है कि लाइनोलिक एसिड मौजूद है इसमें जो कैंसर से आपको बचाता है, और आपकी बॉडी को ये जो हमेशा है इसमें पानी की मिकदार यानी हाइड्रेट रखता है आपकी बॉडी को हमेशा। और ये कहा गया है कि अगर आप रोज़ाना रात को एक नीम गर्म दूध का ग्लास पीजिए तो आपको अच्छी और भरपूर और एक अच्छी और खूबसूरत सी नींद आएगी। ये तो बात होगी कुछ खाने पीने की, चलते हैं खुर्रम के पास। जी
बहुत शुक्रिया रुबाब, और अहम नुकात की तरफ आपने इशारा किया कि जो है दूध की, अलबत्ते ये जो बिशप साहब की जो कहानी आपने सुनाई, कहानी नहीं यानी जो हकीकत थी उनकी, वरन मुझे या तो ये लगता है कि वो जो है डाउन सिंड्रोम नहीं है उनका, या ये है कि
उनकी तस्वीर अगर देखें तो उनकी चेहरे से मालूम
जी, चेहरे से तो बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ मैं कि लग नहीं रहा कि वो डाउन सिंड्रोम, क्योंकि उनकी जो खासियत खसूसियात जो उनके उन्होंने अपनी शख्सियत में,
और खोरा मैंने इनकी खुद शख्सन स्पीचेस सुनी है,
ठीक है,
मैंने इंटरनेट पर चूंकि मैं जब इस बारे में निकाल रही थी तो दिल को हिला देने वाली वो स्पीचेस, यानी आप यकीन करेंगे आपको लगता है कोई लेक्चरर आपसे बात कर रहा है।
अच्छा, ये यही जो है बड़ा अहम सवाल जो रुबाब ने उठा लिया कि जो है ऐसे लगता है कोई लेक्चरर, बीमारी के खिलाफ जंग लड़ना, और अगर नफसियाती बीमारी हो, डाउन सिंड्रोम तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस है मेरे ख्याल में, और जब वो डाउन सिंड्रोम का एक बच्चा जो है वो इतना अपने आप को ऊपर ला सकता है, तो क्या ये लर्निंग डिसऑर्डर का बच्चा नहीं ऐसा कर
जी? बिल्कुल, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी मेरे लिए भी है। डाउन सिंड्रोम में तो मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, इसके अंदर तो अगर बच्चे को एक रीडिंग पुशअप चाहिए या उसको लिखाई का इशू है या उसको रियाजी का इशू है, तो फिर घर में अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा किया जाए पेरेंट्स और टीचर्स, बच्चे को तो ये जंग लड़नी ही है, लेकिन इसके साथ पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है बच्चे को इमोशनली और मॉरली उसको पुश करने में।
ठीक है, सही है, नहीं इसका मतलब ये है कि किया जा सकता है अगर घर में जो है सपोर्ट मिले। अच्छा डॉक्टर भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पर हमेशा जो है हमारे जो मेहमान आते हैं उनसे पूछता हूँ, वो ये कि माहिर नफ्सियात का या काउंसलर का कितना रोल है बच्चे की मदद करने में, या बच्चे की नफ्सियाती या बच्चे के एहसासाती जो बीमारियाँ हैं, जो मुश्किल हैं, उनको हल करने में?
देखिए, अंदर तक तो बच्चे के वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसका काम ये है कि वो बच्चे को किस तरीके से समझाए, उसके पास ऐसे अल्फाज हैं जिससे वो बच्चे को ये समझा सकता है कि उसको उसके, वो ये नहीं बोलेगा कि आप बीमार हैं और ये सब आपको करना है, लेकिन वो उसको, आप ये कह सकते हैं उसको उजागर कर सकता है उस एस्पेक्ट के लिए जिसपे वो वीक है।
मेरा यही सवाल कहने का ये है कि क्या यही काम माँ बाप कर सकते हैं या जरूरी है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना?
साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए जाना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डायग्नोसिस में मदद मिलेगी,
ठीक है,
कि जब आईक्यू टेस्ट से पता चलेगा कि रीडिंग का इशू है, मुताले में इशू है, लिखाई में इशू है, रियाजी में इशू है, तो एक तो आपको डायग्नोसिस में इशू मिलेगी,
ठीक है,
प्लस साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट आपकी मदद कर सकता है किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी घर में अप्लाई करनी है बच्चे के लिए।
हाँ ठीक है, सही, ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक जो चीज़ आपने भी आखिर में जो नुक्ता बताया बहुत अहम था, वो ये था कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो होता है वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपने क्या स्ट्रेटजी रखनी है अपने बच्चे के साथ। ये बहुत अहम नुक्ता है डॉक्टर साहब, कि कुछ माँ बाप बेचारे वो बहुत जोर लगाते हैं, बड़े बहन भाई जोर लगाते हैं, रिश्तेदार जोर लगाते हैं कि ये बच्चा आगे निकल, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में बच्चे को लेके जाना है या उसके साथ मसला क्या है, तो ये साइकोलॉजिस्ट जो है बहरहाल जो है बहुत मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बड़ा अहम मौजू, बहुत अहम मुश्किल हमारे जामे की, हमारे बच्चों की, हमारे माँ बाप की, उसके पर आपने जो है आके कमेंट किया। उम्मीदवारों उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित होगी। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। जी रूबाब,
बहुत शुक्रिया खुरम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और उम्मीद करते हैं हमारे अजीज़ नाज़रीन को आज का मौजू पसंद आया होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हम पहले माँ बाप जो हैं वो घर में कोशिश करें, अगर ना हो तो साइकाट्रिक से साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ज़रूर कंसल्ट करें। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक वक्फ़ा लेने का, जिसमें हम कुछ तारीखी मनाजर देखेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।
मैं आसिफ खान आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ खास लेके। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त, दिल्ली में हूँ, दिल्ली के एक और दिल्ली है पुरानी दिल्ली, जो तकरीबन जो है 1638 में जो है शाहजहां ने जो है आगरा से जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली लेके आया 1638 में। तब से जो है मुस्तकिल यहाँ पे जो है लोग रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी जो स्पाइस मार्केट है, मसालों की मार्केट है, वहाँ पे है। देखिए, अगर हिंदुस्तान का कहीं नाम आता है कल्चर में, ट्रेडिशंस में, उनके फरहंग में, तो जो है मसालों का तो नाम आना जो है बहुत लाजमी है, क्योंकि वो जो मेन है। तो थोड़ा सा मसालों से जो है रूबरू होंगे आज, जो हिंदुस्तानी मसाले हैं जिनसे जो है जायका जो है बढ़ता है खानों का। तो चलिए, इसकी अगर बात की जाए हिंदुस्तान में जो है ये जिसको लौंग का जो है खिताब हासिल है, और ये जो है काफ़ी बड़ा मकाम है इसका, क्योंकि जितने भी खाना बना करता है उसमें जो है ये मुस्तकिल जो है यूज़ होती है। तो हम लोग हिंदुस्तानी मसालों का जो है जिक्र कर रहे थे, उसमें अगर जो हल्दी की बात ना हो तो जो है वो पूरी बात नहीं होगी। इसी ये है हल्दी, और जो है इसका एक इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है खानों में, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी जो है इसको जो है अगर खिसके पत्थर पर, अगर इसको घिस के जो है अगर फेस पे लगाया जाए तो फेस पे जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें जो है ये शादी में जो है इसको जो है जो दुल्हन होती है उसको जो है उसका लेप जो है इसी का लगाया जाता है। बाकी इसको दूध में डाल के अगर खाएं तो जो है उसके बाद अगर कहीं दर्द है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। ये तो था हल्दी का इस्तेमाल। बाकी ये है सूखी मिर्च। हिंदुस्तान में सूखी मिर्चों का जो है हर जो भी सब्ज़ी है, जो भी खाना बनता है उसमें मिर्चों का इस्तेमाल होता है। उसको ऐसे ही भी डालते हैं, इसको पीस के भी डालते हैं, तो दोनों तरीके से जो है इसका इस्तेमाल हो जाता है। ये आ जाता है धनिया, ये साबुत धनिया है, और इसको जो है पीस के भी जो है मसालों में पीस कर भी जो है इसको पीसा जाता है, पिसवा कर इसको जो है सब्जी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसको जो है ऐसे भी साबुत भी डालते हैं। सर ये क्या है?
ड्राई ग्रीन मैंगो अमचूर।
अच्छा, ये अमचूर है ये। अच्छा, ये जो आम होता है, हरा आम जो होता है खट्टा, उसको जो है सुखा के जो है इसको अमचूर बना लिया है। तो ये किसमें काम आता है?
चटनी वगैरह बनाने काम में आता है, या अपने डिश को थोड़ा सा सॉफ्ट मैच देने के लिए काम में आता है। तो मीट एकदम खट्टा,
हिंदी
हाँ, आप थोड़ा सा इसको खट्टा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आम चटनी या हरी चटनी या खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसके बारे में बताइए क्या है ये?
ये बेसिक ये राजस्थानी फूड है, ड्राई वेजिटेबल्स है ये ग्वार फली कहलाती है।
अच्छा, ये ग्वार की फली तो मैंने देखा है। अच्छा,
ये तल के भी खाई जाती है एज अ स्नैक, और ये बना करके सब्जी बना के भी खाई जाती है।
अच्छा, और ये
सांगर है, ये सांगर फली।
अच्छा,
ये सीट बोलते हैं इसे?
नहीं, ये वाला
ये सांगर बोलते हैं इसे।
हाँ,
सांगर, ये टीट होती है।
टीट,
ये बेसिकली राजस्थानी फूड है। राजस्थान में एक ट्रेडिशन, इसको सुखा के रखा जाता है ताकि पूरे साल जिन दिनों में सब्जियां नहीं मिलती हैं उन दिनों में सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है।
ओके,
राजस्थान एक ड्राई एरिया है, वहाँ 12 महीने हर सब्जी नहीं मिलती है, तो एक वहाँ का लोकल ट्रेंड है ये, सब्जियाँ सुखा के रख लेते हैं और साल भर इसको इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हमें जो है वो इलायची वाला उठा के थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
ये ग्रीन कार्डमम, इंडिया की ये सबसे बेस्ट ग्रीन कार्डमम होती है, वैसे तो देश के पूरे विश्व में कई जगह आती है, लेकिन ये जो क्वालिटी है इंडिया की ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। साउथ इंडिया में
ये होती है,
साउथ इंडिया।
देखिए अगर हम काली, अगर हम हरी इलायची का जिक्र करें तो हिंदुस्तान उसमें जो है सबसे नंबर वन है, क्योंकि आज से ही नहीं, अभी भी बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी है ये,
महंगी
है, आज से 700-800 साल पहले भी जो है बहुत महंगी मिला करती थी। एक शख्स थे वास्को डी गामा, वो हिंदुस्तान आए थे तो सिर्फ मसालों की वजह से, तो ये जो है ये बाहर जो है यहाँ से सप्लाई होती है, बहुत बड़ी तादाद में जो है इसको सप्लाई किया जाता है और बहुत महंगी मिलती है। कितने रुपए किलो होती है
ये? ये सब 1200 रुपए किलो है।
देखिए ये 1200 रुपए किलो है, ये खुशबू से इसका जो है पता चल जाता है कि किस क्वालिटी की है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी।
ये जीरा है, क्यूमिन, ये बेसिक इंडियन सारी सब्जियों में सबसे बेसिक स्पाइसेस में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, ये पीपल बोलते हैं, दालचीनी, सूखा अदरक जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, ये सब मसाले गरम मसाले के इसमें हैं और ये काफ़ी खुशबूदार और एक अलग अरोमा देते हैं, जिससे खाना जो है इंडियन फूड के अंदर ये बेसिक स्पाइसी है जो सब चाहते हैं।
मतलब जो है अगर साहू साहब की जो बात माने तो बिना जो हिंदुस्तानी मसालों के जो है खाना जो है अधूरा हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि हिंदुस्तान में जो है इसकी खास अहमियत है। बहुत पहले जो है बाहर से जो है विदेशी जो हिंदुस्तान में आए तो सिर्फ इस वजह से आए, हिंदुस्तान में सिर्फ साउथ इंडिया में मिलता है, दक्षिण भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में मिलता है, और ये वहाँ से जो है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान ही नहीं बाहर में मुख्तलिफ जो इलाके हैं और दुनिया है वहाँ पर जो है इसकी सप्लाई होती है। इसको काली मिर्च कहा जाता है यहाँ पर।
ये पिस्ता वगैरह
चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग जो है अपना जो सफ़र है, जो दिल्ली वाला जो सफ़र, जो हम इतने दिनों से जो है हमने तारीख की बातें की, हमने जो है फतेहपुरी की बातें की, हमने जो है पीछे की तरफ जो है यूनानी जो जड़ी बूटी थी उनकी बातें की, उससे पहले हम महरौली भी गए थे। अभी जो है हम अपना जो सफ़र है दिल्ली है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक और नया जायका मैं आप तक पहुँचाऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।
जी आपने आसिफ भाई जो है उनकी बार रिपोर्ट देखी,
तारीखी नहीं थी, मसालेदार थी।
नहीं, वो तारीखी हम इसको इसलिए कहते हैं, वो इस वक्त मैं ये वजाहत करना चाह रहा था क्योंकि ये इतनी पुरानी हो चुकी है, इतनी बार हम जा चुके हैं,
तारीखी हो गई है। बाकी मसालेदार भी हम बोल सकते हैं,
मसालेदार तारीखी रिपोर्ट दी है। बहरहाल जो है बहरहाल कभी कभी मजा आता है जो अपनी बातें उनको सुनने में, इलायची वगैरह की जो है क्या खबर है और कितने की 1200 रुपए की बताए, आप तो महंगी होगी। बहरहाल इन बातों से बाहर आते हैं हम लोग, आते हैं हम, हमारा जो है हमारे साथ जो है डॉक्टर अनायत हुसैन फोन लाइन पे मौजूद हैं और उम्मीद करता हूँ हमारी आवाज सुन रहे होंगे। सलाम अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब?
जी दुआएं आपकी, आप खैरियत हैं?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मौजू जो है आपको पता चल गया होगा, हमारा जो मौजू चल रहा था लर्निंग डिसऑर्डर पे, बच्चों में जो ये मुश्किलात पेश आती हैं इसके बारे में, और जो है बहरहाल हमने मुख्तलिफ सवाल जो है डॉक्टर सुलेल फातिमा से भी किए, यहाँ रुबाब जो है आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हैं।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, और मैं डॉक्टर साहब की खिदमत सलाम अर्ज करूंगी। डॉक्टर साहब
और
मेरा सवाल ये होगा कि अक्सर देखा ये बच्चे बी और डी में हमेशा मिक्सअप कर देते हैं, या ये दोनों को एक जैसा लिखते हैं, बी को डी और डी को बी बनाते रहते हैं
जो जी,
और आवाजों को भी आपस में जो है हो सकता है इनमें डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते, आया ये लर्निंग डिसऑर्डर की अलामत है?
देखें जैसा आपको जिक्र किया गया होगा कि लर्निंग डिसऑर्डर्स में जो ना हर वो डिसऑर्डर जो कि कंटिन्यूसली पाया जाए बच्चे के अंदर, यानी ये नहीं कि किसी वक्त है किसी वक्त नहीं है, अगर कंटिन्यूसली पाया जाए तो वो जो ना वो लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। आपने जो जिक्र किया डी और बी का, ये जिस तरह खुद प्रोसेस है लर्निंग डिसऑर्डर का या डिसेबिलिटी का, उसके अंदर ये होता है कि चार प्रोसेस होते हैं, इनपुट है और پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو آرگنائزیشن ہے, پھر اس کی میموری ہے اور پھر آؤٹ پٹ ہے. تو ان پٹ کے اندر جو ہے نا ہم دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آڈیٹری پرسپشن اینڈ ویژول پرسپشن. تو جو ویژول پرسپشن میں اگر پرابلم ہو خدا نخواستہ, یہ پورا ایک آپ کو اس کی پوری فیزیولوجی اور اناٹومی موجود ہوتی ہے برین کے اندر, یعنی آنکھوں سے لے کر اور برین کے جو ہے ویژول سینٹر تک, اس کے اندر کہیں بھی پرابلم آیا تو یہ ڈس آرڈر جو ہے نا وہ پایا جا سکتا ہے خدا نخواستہ کسی بچے میں کسی بھی وجہ سے, کیونکہ اس کی کازز تو بہت زیادہ ہیں. تو اس میں ڈسکس نہیں کر رہے, تو وہ جو ہے نا ویژول پرسپشن اگر پرابلم ہو تو یہ جو ہے نا بچے نا یہ پرابلم کرتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی بچے میں پرابلم پائی جائے تو پھر اس کا جو ہے نا حتماً علاج کرنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت ہمارا محدود ہے, معذرت کے ساتھ, کچھ نکات اگر آپ اشارہ کرنا چاہیں کہ کیسے والدین, ٹیچرز یا ڈاکٹرز مدد کر سکتے ہیں اس بچے کی؟
دیکھیں مدد تو یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ جو ہے یہ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم جو ہے نا فوکس کرتے ہیں خود اس پرابلم پہ نا, تو بچے کو جو ہے نا بار بار جو ہے وہ ممکن ہے کہ اب سب سے پہلے ہم جو ہے نا اس کا ایک کمپلیٹ جو ہے نا وہ آپتھالموجی ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا آئی ٹیسٹ کروائیں کہ دیکھیں اس کے آئی میں تو پرابلم نہیں ہے. تو اس کے اندر یہاں پہ ایک نقطہ ضرور ذکر کروں کہ حتما جو ہے نا پری اسکول بچوں کا جو ہے وہ ایک آئی ٹیسٹ حتما ہونا چاہیے, ان کی آئی سائٹ جو ہے نا حتما چیک ہونی چاہیے, کیونکہ بعض وقت جو ہے وہ اکثر جو پرابلمس ہوتی ہیں آنکھوں کے اندر وہ جو ہے وہ کریکٹیبل ہوتی ہیں, ان کو ہم جو ہے نا ان کی کریکشن ہو سکتی ہے, مختلف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو اگر پرابلم ہو خدا نخواستہ. اگر خدا نخواستہ کسی بچے کو جو ہے وہ اسکول سے پہلے ایک پرابلم تھی آنکھوں میں, مثلاً اسٹیبلشمنٹ تھا یا خدا نخواستہ کوئی انٹیپیکل ڈیفیکٹ تھا اس میں, یا اس کی کوئی جو ہے نا آئی سائٹ پرابلم تھی جو کہ ایزلی جو ہے وہ اس کا علاج ہو سکتا تھا, اگر وہ علاج نہ کیا جائے تو یہ پرابلم جو ہے نا اس کا باقی رہ جائے گا, اور جو کہ آخر عمر تک جو ہے نا اس کے ساتھ رہے گا, پھر وہ کسی بھی گلاسز سے اینک سے جو ہے نا وہ علاج اس کا پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر بچے کا جو ہے وہ ایک آئی ٹیسٹ ہونا ضروری ہے.
ڈاکٹر صاحب وقت بالکل ہمارا ختم ہو چکا ہے, صرف جو ہے بہرحال آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انشاءاللہ جو ہے دوبارہ بھی جو ہے آپ کو آپ سے اس موضوع پہ جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے. صرف ایک چیز جلدی سے ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیجیے گا کہ ماہر نفسیات کا کیا رول ہے؟
دیکھیں ماہر نفسیات کا اہم رول ہے اس کے اندر, اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم پائی جاتی ہے تو اس کے اندر پوری ایک اسپیچ تھراپی ہوتی ہے جو کہ اور اوور آل ہم اس کو سائیکو تھراپی کے اندر لیتے ہیں, وہ پروسیس ہوتا ہے اس کو جو ہے نا مختلف ان کے میکینزمس ہوتے ہیں, مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ ہم ان کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح عمل کریں, اور ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا کچھ جو ہے وہ کلاسز جو ہے وہ حتما سائیکو تھراپسٹ یا جو اسپیچ تھراپسٹ ہے اس کے پاس لے کے جائیں, وہ پروسیس اس کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا بعض اسپیسیفک ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں, پھر اوور آل جو ہے نا جو ان کو احتیاطی چیزیں بتائی جاتی ہیں ان پہ وہ عمل کریں تو یہ چیزیں نا کریکٹ ہو سکتی ہیں,
صحیح,
ایسا نہیں کہ علاج نہ ہو ان کا.
ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ہفتے کا موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے احترام, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں اس سلسلے میں بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم جو ہے ہمارا بالکل ختم ہو گیا. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, ان شاء اللہ دوبارہ آپ کو کال کریں گے, بہت شکریہ. جی تو ناظرین آپ لوگوں نے ڈاکٹر عنایت حسین کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی, لیکن معذرت کے ساتھ ہم زیادہ جو ہے ہم گفتگو نہیں کر سکے. ایک چیز جو انہوں نے کہی کہ کچھ کبھی کبھار ایسے مشکلات ہوتی ہیں جو آنکھوں میں ہوتی ہیں یا اور قسم کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہوتا, تو ہو سکتا ہے شاید وہ مشکلات ہوں, فوری طور پہ ایل ڈی کی طرف نہیں جانا چاہیے. بہرحال ہمارا ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو گیا, کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران خان ہوں گے اور اینٹی بایوٹکس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے.
جی بس ہم یہاں پر ناظرین سے خدا حافظ چاہیں گے, کل تک کے لیے مجھے اور خورم کو اجازت دیجیے,
خدا حافظ.